यशवर्धन सिंह को हमले से बचाने के बाद वैदेही उसके साथ अपने घर जा रही थी। यशवर्धन ने उन सभी गुंडों को सूट कर दिया था। उसकी इस हरकत से वैदेही उस पर काफी नाराज थी, लेकिन उसके बार बार इंसिस्ट करने पर वो उसके साथ जाने के लिए तैयार हो गई। अपने किए की सफाई देने के लिए आपके पास पूरे 45 मिनट हैं। कार में बैठते ही वैदेही बोली, मैं जानता हूं कि आपके लिए चुप रहना बहुत मुश्किल था। जैसा कि लोग आपके बारे में कहते हैं वो बिल्कुल सही है, आप बहुत बहादुर हैं और बहुत सच्ची भी। सच आपने बोलने ही कहाँ दिया मिस्टर सिंह, मेरे बारे में तो आपने बिल्कुल सही सुना था, लेकिन आपके बारे में, आपके बारे में सुनी हुई बातें आज झूठ लग रही हैं, वैदेही ने तंस कसा। उसकी बात सुनकर यशवर्धन सिंह ने गहरी सांस लेकर छोड़ी, यकीन मानिए मैंने आपको आपकी भलाई के लिए ही रोका था। वैदेही ने उसके बाद उसका कोई जवाब नहीं दिया। यशवर्धन उसकी चुप्पी का मतलब समझ रहा था कि वो आसानी से उस पर भरोसा करने वाली नहीं थी। मैं आपको बता भी दूं कि ये हमला किसने करवाया था, फिर आप या आपकी पुलिस कुछ भी नहीं कर पाएंगी। जहां तक मैं आपको जानता हूं, उस इंसान का नाम सुनने के बाद आप उसके अगेंस्ट कुछ न कुछ जरूर करती हैं, और मैं आपकी जान खतरे में नहीं डालना चाहता। वैदेही जी, आप बातों को गोल गोल जलेबी की तरह क्यों घुमा रहे हैं? क्योंकि इसी में आपकी भलाई है, ये कहकर यशवर्धन चुप हो गया। अगले 10 मिनट तक वहां पर एक चुप्पी छाई रही जिसमें किसी ने कुछ नहीं बोला। वैदेही के बार बार पूछने पर भी यशवर्धन उससे उस आदमी का नाम नहीं बताया। उसकी इस हरकत से वैदेही चिढ़कर चुप बैठी थी और बस घर आने का इंतजार कर रही थी। वैसे इतनी रात को आप उस रास्ते पर क्या कर रही थी, यशवर्धन ने चुप्पी को तोड़ते हुए पूछा। यही सवाल मैं आपसे पूछ सकती हूँ, लेकिन आप तो उसका जवाब देंगे नहीं। आपने तो बस एक जवाब अच्छा खासा रट रखा है, वही कह देंगे कि मैं किसी की भलाई के लिए जुबान नहीं खोल सकता। वैदेही गुस्से में उस पर बिफर पड़ी। आपने मेरी जान बचाई है, तो बदले में कभी भी आपको मेरी जरूरत पड़े तो आप मुझे बेझिझक कभी भी कॉल कर सकती हैं, यशवर्धन ने बातचीत का रुख मोड़ा। वैसे वो रास्ता सेफ नहीं है, आपको वहां से नहीं जाना चाहिए था, यशवर्धन बोले जा रहा था जबकि वैदेही उसकी बात का कोई जवाब नहीं दे रही थी। हम आपसे बात कर रहे हैं वैदेही जी, आप कुछ जवाब क्यों नहीं दे रही? जब तक आप मुझे मेरे सवालों के जवाब नहीं देते थे तब तक मैं आपके किसी सवाल का जवाब नहीं दूंगी। एंड थैंक्स कि आपने मेरी हेल्प करने के बारे में सोचा, लेकिन आज आपने जो किया उसके बाद आई विश कि हम कभी ना मिले। यशवर्धन उसकी बात का जवाब दे पाता उससे पहले ड्राइवर ने गाड़ी रोकते हुए कहा, मैडम आपका अपार्टमेंट आ गया है, ड्रॉप करने के लिए थैंक यू सो मच मिस्टर यशवर्धन सिंह। बोलते हुए वैदेही गाड़ी का दरवाजा खोलने लगी। यशवर्धन ने उसे रोकने के लिए उसका हाथ पकड़ना चाहा, लेकिन वैदेही ने उसे उंगली दिखाते हुए गुस्से में जवाब दिया, डोंट यू डेयर। वैदेही ने गाड़ी का दरवाजा खोला और अपने घर में जाने के लिए लिफ्ट का रास्ता लिया। उसके जाने के बाद भी यशवर्धन सिंह की गाड़ी अभी भी वैदेही के अपार्टमेंट के आगे खड़ी थी। एक दिन तुम मुझे खुद से मिलने के लिए आओगी, तब तुम्हें पता चलेगा कि मैंने ये सब सच में तुम्हारी भलाई के लिए किया था वैदेही, यशवर्धन ने सोचा और फिर ड्राइवर को गाड़ी चलाने को कहा। अगले दिन वैदेही सुबह उठी। रात को देर से घर पर आने की वजह से वो देरी से ही जगी थी। हमेशा की तरह उसने मॉर्निंग वॉक पर जाना भी स्किप किया। वैदेही को देर हो जाने की वजह से नरगिस ब्रेकफास्ट लेकर उसके कमरे में ही आ गई। तुम क्या आज ऑफिस नहीं जा रही, नरगिस ने वैदेही को देखकर बोला। जहां हमेशा वो ऑफिस वेयर में रहती थी वहीं आज उसने कैजुअल्स पहने हुए थे। सोचा तो यही है, एक बार प्रतीक सर से बात करके कन्फर्म कर लेती हूँ, अगर वहां कुछ काम हुआ तो चली जाऊंगी, वरना मैं और देव। वैदेही ने अपनी बात खत्म भी नहीं की थी कि नरगिस ने उसे बीच में काटते हुए बोला, क्या यार तुम थोड़े दिनों के लिए भी चैन से नहीं बैठ सकती, क्या तुम्हें ये सुकून भरी जिंदगी पसंद नहीं है? नहीं, वैदेही ने ना में सिर हिलाते हुए कहा। एयर कंडीशनर के अंदर ऑफिस में बैठकर काम करना बहुत आसान होता है, अगर सभी इसी सुकून के बारे में सोचते तो आज बॉर्डर पर खड़े सोल्जर्स भी सुकून के साथ अपनी फैमिली के साथ रह रहे होते। तुम क्या कम हो, तुम्हारा बस चले तो तुम भी एक मशीन गन लेकर बॉर्डर पर खड़ी हो जाओ, नरगिस ने जवाब दिया। अगर मुझे बॉर्डर पर खड़ा होना होता तो मैं आर्मी ज्वाइन करती, हर एक व्यक्ति का इस देश की सुरक्षा में अलग अलग रोल है, चाहे वो सोल्जर हो या पुलिस, या रिपोर्टर हो या डॉक्टर, किसी का काम आसान है तो किसी का ज्यादा मुश्किल। कभी तो नॉर्मल लाइफ जी लिया करो, हमेशा इसी तरह भाषण देती रहती हो, नरगिस ने कहा और प्लेट में पड़ा टोस्ट उठाकर खाने लगी। वैदेही ने मुस्कुराकर उसकी बात को टाल दिया और उसके पास बैठकर नाश्ता करने लगी। अच्छा अब बताओगी कि कल रात को कौन सी एक्शन मूवी का शूट हो रहा था जो आने में इतनी देर हो गई, नरगिस ने पूछा। वैदेही ने अब तक उसे कल रात के बारे में कुछ नहीं बताया था। कुछ खास नहीं, बस ऑफिस में देर तक काम करते हुए लेट हो गई, वैदेही ने बहाना बनाकर बात को छुपा लिया। नरगिस ने भी आगे कुछ नहीं पूछा क्योंकि अक्सर पहले भी देर तक काम करते हुए वैदेही को आने में लेट हो जाती थी। नाश्ता खत्म होते ही नरगिस ने प्लेट उठाई और कहा, लगता है आज फिर ऑफिस अकेले जाना पड़ेगा। तुम प्रतीक से बात कर लोगी या मैं उन्हें जाकर इन्फॉर्म करूं? मैं उन्हें कॉल कर लूंगी, वैदेही ने जवाब दिया। नरगिस ने उसकी बात पर हामी भरी और थोड़ी देर बाद ऑफिस के लिए निकल गई। उसके जाने के बाद वैदेही ने देव को मैसेज करके अपने घर पर आने का बोला और उसके बाद प्रतीक को कॉल किया। प्रतीक सर, आज मैं ऑफिस नहीं आ रही। पता था मुझे, अपने काम से फ्री होते ही मुझे कॉल करना। कल रात के बारे में मुझे हर एक बात जाननी है, सामने से प्रतीक की आवाज आई। उसकी बात सुनकर वैदेही ने हैरानी से पूछा, और आपको इसके बारे में किसने बताया? वैदेही, तुमने कल रात जिसकी जान बचाई है वो कोई आम आदमी नहीं, महाराष्ट्र का भावी मुख्यमंत्री हो सकता है। शायद आज तुम मॉर्निंग वॉक पर नहीं गई और ना ही तुमने न्यूज पेपर पढ़ा होगा। न्यूज देखने का टाइम तो फिर कहां से मिलने वाला था। प्रतीक के कहते ही वैदेही दौड़कर लिविंग रूम में आई और जल्दी से टीवी ऑन किया। टीवी पर सभी न्यूज चैनल अपने अपने हिसाब से उस न्यूज को तोड़ मरोड़ कर दिखा रहे थे। प्रतीक का कॉल चालू था और इसी बीच पर वैदेही चैनल बदल बदल कर सभी चैनल्स की न्यूज देख रही थी। एक नए खुले न्यूज चैनल पर आते ही वैदेही ने उसे वहीं पर रोक दिया। उसे देखकर उसके चेहरे पर गुस्से के भाव थे। कल रात अगर हमारे जिम्मेदार नेता यशवर्धन सिंह नहीं होते तो एक न्यूज रिपोर्टर और उसके साथी की जान जा चुकी होती। वक्त रहते यशवर्धन सिंह ने तेजी दिखाते हुए उन सभी गुंडों को मार गिराया और न्यूज रिपोर्टर और उसके साथी की जान बचा ली, एक महिला न्यूज एंकर न्यूज बता रही थी। उसे देखने के बाद वैदेही ने गुस्से में टीवी बंद कर दिया और प्रतीक से कहा, पता नहीं ये लोग कब सुधरेंगे, जो टीआरपी के चक्कर में कुछ भी दिखा देते हैं, जबकि इन्हें इस बारे में कुछ नहीं पता। काम डाउन वैदेही, ये कौन सा पहली बार हो रहा है? बस यही फर्क है हम लोगों में और इन लोगों में। ये मिर्च मसाला लगाकर झूठ को परोसते हैं, जबकि हमारा सादा सच भी लोगों को लुभाने के लिए काफी होता है। प्रतीक की बात सुनकर वैदेही चुप हो गई। उसे कल रात से यशवर्धन पर गुस्सा आ रहा था, ऊपर से ये खबर देखने के बाद तो उसका गुस्सा सातवें आसमान पर था।
मैंने यशवर्धन की, वैदेही सच बताने लगी, लेकिन प्रतीक ने उसके बात के बीच में बोलते हुए कहा, तुम्हें कब से मुझे सफाई देने की जरूरत पड़ गई? मैं अच्छे से जानता हूँ कि कल रात अगर तुम वहाँ मौजूद नहीं होती तो यशवर्धन सिंह के दो सिक्योरिटी गार्ड की तरह बाकी के दो गार्ड और वो खुद भी मारा जा चुका होता। एग्जैक्टली यही हुआ था। अच्छा अब अपना मूड ठीक करो, थोड़ी देर में देव आता ही होगा। एंड मैंने तुम्हें कल रोका था, लेकिन आज मैं खुद चाहता हूँ कि तुम इस प्रोजेक्ट पर काम करो और उन सब लड़कियों को इंसाफ दिलाओ, ताकि लोगों को भी तो पता चले कि वैदेही दूसरों की जान बचाती है, ना कि कोई और उसकी। प्रतीक की बात सुनकर वैदेही के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। हालांकि उसका गुस्सा कम नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी वो मोटिवेटेड फील कर रही थी। थैंक यू सो मच सर, वैदेही ने कहा और प्रतीक का कॉल कट कर दिया। वैदेही कल रात हुए हादसे को भुलाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन न्यूज चैनल पर आ रही रिपोर्ट को देखने के बाद वो उसकी तह तक पहुंचना चाहती थी। जरूर दाल में कुछ काला है, कुछ तो ऐसा है जो यशवर्धन सिंह मेरे सामने नहीं आने देना चाहता, इस बात को इतनी आसानी से जाने नहीं दे सकती, वैदेही ने सोचा। वो खुद के ख्यालों में खोई हुई थी तभी उसके घर की डोरबेल बजी। इसी के साथ उसका ध्यान टूटा। लगता है देव आ गया है, वैदेही ने खुद से कहा और दरवाजा खोलने उठी। उसका अंदाजा सही था, सामने देव मौजूद था। कल रात हुए हादसे की वजह से वो भी परेशान था। उसके बाद दोनों को बात करने का भी मौका नहीं मिला। बैठकर बात करते हैं, वैदेही ने उसके परेशान चेहरे को देखकर कहा। देव ने उसकी बात पर हामी भरी और दरवाजा बंद करके अंदर आकर बैठ गया। दोनों ने काफी देर तक कुछ नहीं कहा और फिर अचानक से दोनों ने एक साथ बोला, मुझे कुछ सही नहीं लग रहा, वो यशवर्धन। बोलते हुए दोनों रुक गए और समझ भी चुके थे कि आखिर दोनों क्या करना चाहते थे। दोनों के मन में एक ही बात चल रही थी कि जरूर इस यशवर्धन से उनसे बहुत बड़ी बात छुपा रहा था। हम यशवर्धन के बारे में पता लगा कर रहेंगे, वैदेही ने कहा। मैं भी आपसे यही कहने वाला था, देव ने जवाब दिया। वैदेही और देव अब यशवर्धन के बारे में सारा सच पता लगाने में जुट गए। जहां सब तरफ से यशवर्धन की अच्छी इमेज बनी हुई थी, वहीं अब उन दोनों को उसकी हरकतों से उस पर शक होने लगा था।